कंदर्वों को, सूत्रों को घूम मथन करके और मनन करके न इन्होंने पीत कंदर्व थोड़ा हो गया और न इन्होंने भक्त कंदर्व न कर्म कंदर्व न ताराट दर्शनी इतना चक्रवर्ती की गीता और ना कोई ऐसा बिंदु जो महाराष्ट्र में पहले से स्वयं न पूछ लिया। तो वैष्णव अन्य चर्चा को आप सुनते हैं केवल 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 से बना कैवल्य कैवल्य माने होगी मोक्ष होगी। आज उसी विचार बिंदु पर हमारे यहाँ के विद्वान पढ़ा रहे और आपको कैवल्य युक्त प्रयोजनम श्रीमद् भागवत गीता प्रयोजन क्या केवल मोक्ष प्राप्ति है अद्वितीय वस्तु क्या है ब्रह्मात्म का संबंध क्या है तन्निष्ठ कैवल्य का प्रयोजन क्या भागवत जी कैसे इन अधिकार विषय संबंध प्रयोजन चारों की मीमांसाओं को समूह अपने में संक्षिप्त गर्व करते हुए त्रयोदश अध्याय तक महाराज जी ने इसकी यात्रा की है और अब इस पर मंगलाचरण के उपरांत अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ये अध्यक्ष महाराज विद्वान वक्ता और नित्य मार्ग करता है। भागवत जी में अपर्व श्रद्धा है और श्रीमद भागवत जी के गहन विचारक रहे
आपकी कवि को नहीं जगत के बीच में और जो अंतर ध्यान है तो सब बहुत अंतर ध्यान है। अब कोई ऐसो यत्न हो जाते प्रभु अंतर ध्यान है ना तो भी उनके गुण और उनकी लीला ये जगत में है यानी कि श्रीमद् भागवत कवि को निर्माण है यहाँ ज्यादा में आश्रय है आश्रय जो है वो जगत की तो उनकी प्राप्ति के लिए ये जीवात्मा हरि को जीवन मुंबई मानस को जीवन के जीवन रूप चलाना तो यानी ये प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति के लिए मुंबई तत्व आत्मा जो है धर्म रूप में है ये विश्व के धर्म है और या जो प्रकार अनेक कल्याण के भक्ति मार्गों बहुत को मार्ग धर्म धाते थे स्वभाव गुण मार्ग में शासन भाव तो अनेक तरह के भक्ति मार्ग के बिना भक्ति के बिना जो भगवत प्राप्ति हो रहे हैं ज्ञान भी है जहाँ भी कई वर्णन किए श्रीमद् भागवत जी ग्रंथ के बीच में ज्ञान और भक्ति दोनों के लिए वर्णन किया परंतु ये ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति में कष्ट ये जो है एक निर्बीज भक्ति योग है एक सबीज भक्ति योग है यतो निस्सरति मनस्संचलम स्थिरम ततस्तदो विनयमेत ये जहाँ जहाँ मन जाए अकेले रोक करके प्रभु में लगानो ये जो है निर्बीज योग है या मैं इंद्रन को जैसे नेत्रन को अंधकार में कोई प्रयोग नहीं है ऐसे ज्ञान मार्ग में इंद्रन को कोई भी प्रयोग नहीं है जो दर्शन है नेत्रन को धर्म सुंदर दर्शन करने को कानन को धर्म सुंदर तान बंसी की धुन सुनने को जिह्वा को धर्म रसास्वादन करने को और ये त्वचा को धर्म कोमल स्पर्श करने को ये वस्तु कोई नहीं है क्यों कि ज्ञान मार्ग में खाए कि दिवसूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत उत्थिता यदभा सदृशी साक्षात भाषस पश्चिम आत्मन यदि हजारन करोड़न सूर्य एक संग उदय हो तो भी उनको प्रकाश
ब्रह्म को सब प्रकाश है सके नहीं है सके, परंतु वहां प्रकाश में प्रकाश लीन है, वो नेत्र देखो नहीं, हमने कान से कुछ सुनो नहीं, हृदय से कुछ ध्यान नहीं किया, तो कहा हमें मिलो का तेसा मसौ क्लेशले शिष्य थे नान्यत यथा स्थूल तुषार खाते। या में ज्ञान मार्ग में ये भक्ति के बिना तो निर्वाह नहीं है ज्ञानी को, क्यों कि यक्षात सर्वत्र सर्वदा, ये भक्त मार्ग के बिना आज तक ज्ञान से काव्य प्रभु की प्राप्ति भई नहीं, और केवल भक्ति से प्रभु की प्राप्ति है या कि बहुत प्रमाण है। अब वो तीन प्रकार है तो हजारों तरह के स्वभाव गुण मार्ग से, परम तीन प्रकार के हैं स्थानीय भूता, प्रधानी भूता और केवल। स्थानीय भूता जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके लिए स्थानीय भूता भक्ति है, वे केवल ब्रह्म ज्ञान करे हैं, और जो प्रधानी भूता है जिनको ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति योग है, तो जहाँ ज्ञान पूर्वक भक्ति है वह भक्त्याभास है, शुद्ध भक्ति नहीं है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्त रुक्तम। तो स्थानीय भूता और प्रधानी भूता जो भक्ति है, जैसे ज्ञानी हैं वो केवल ब्रह्म ज्ञान करे हैं, और जो प्रधानी भूत हैं ऐश्वर्य मिश्रित उनको भक्ति योग है। तो जो स्थानीय भूत भक्ति है वहाँ से सतगुणों आनंद है, जैसे हमारे वसुदेव जी हैं, इनकी उपासना इनको ध्यान जो ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति भी है और ऐश्वर्य मिश्रित भी है, क्योंकि प्रभु ने प्रणाम किया उनके चरण के बीच में, आपने आशीर्वाद नहीं दियो, डर गए हैं कि ये तो ईश्वर है। और उनसे भी ज़्यादा जो केवला है, जो प्रभु को ईश्वर समझे ही नहीं है, जो कि अपना बालक ही समझे हैं, उन्होंने ईश्वर भाव कभी उदय नहीं हो, तो केवल है उनको आनंद जो होते। जैसे आपका राजमहल में जाओ तो राजमहल के बाहर सो आप दिख जाए कि ये राजभवन है, ये बगीचा है, ये स्थानीय भूता भक्त को है। और यदि प्रधानी भूत भक्त हैं वो अंदर जाएंगे, महल की प्रदक्षिणा कर लेंगे, देख लेंगे कि ये महल बने भए इनमें प्रभु जो है राजा साहब निवास कर रहे हैं, और जो केवला हैं वे तो श्री अंग में जाएंगे, विद्रे में ये आनंद करें हैं, दर्शन करें, यहाँ प्रभु बैठे हैं, यहाँ जो स्नान करें हैं, यहाँ विलास करें हैं, ये जो है अगर उनके लिए अंतरहित भगवती सहसयुक्त अतप्य तम चक्षा करेना एवं यूथ। या प्रकार जो भक्त हैं श्रीमद् भागवत जी में दोनों विषय वर्णन किए हैं, ये तात्पर्य कैवल्य प्रयोजनम, या तो यही तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग भी वर्णन किनो है और भक्त मार्ग भी वर्णन किनो है, तो परम श्रेष्ठ ये भक्त मार्ग है। या मैं चमत्कृति दिखाए करूँ ज्ञान मार्ग को भी वर्णन कियो, क्यों सभी भक्त ने यहाँ बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, सूर्य के सामने दीपक जो है यही जो है पुलोसी वृंदावन बिहारी
शास्त्र भी ठाकुर विज्ञेय शास्त्र भेर शास्त्र भी ठाकुर विज्ञेय सभायाम अत्र संस्थित शास्त्र भी ठाकुर विज्ञेय सभायाम
चरण कमलों के पाद उठाता दास हूँ, मैंने आँखों से कलकत्ते में प्रत्यक्ष देखा है, एक भक्त महात्मा आए आगे बैठे हुए, लोना का महाराज आप आगे बैठे हैं, यहाँ तो जो प्रधान है बैठेंगे तो पीछे खिसकते, क्या होता है उनको पकड़ करके सबसे पीछे बैठा लिया, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठेंगे, बड़े विद्वान बैठेंगे, बड़े महात्मा बैठेंगे, तो महात्मा जी चरण पादुकाओं के पास जाकर के बैठ गए। अब जो लोगों ने देखा अरे ये तो बड़े महात्मा हैं, इनको जीतियों के पास बिठा लिया है, क्योंकि उठाते नहीं नहीं बोले आज तो मेरे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि मैं भक्तों की पादुकाओं के पास बैठा बैठा, ये जो भक्त आए हैं पीछे से जूती देखते रहेंगे कहीं चोर नहीं ले जाए, आज तो उनकी पादुकाओं की सेवा करूँगा, बस यही मेरी भक्ति है। तो वास्तव में कितनी सरलता है, वो सरलता ही भक्ति का लक्षण। वाह गद गदा द्रवते यश्च चित्तम रोदच्च भीषणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भवनं पुनाति। मेरा भक्त जो है संसार का कल्याण करता है। जिस समय स्वामी चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे हैं, महाराज मार्ग में जितने भी हिंसक जंतु हैं सब उनके कीर्तन को देख करके अहिंसक हो जाते हैं। यही विशेषतर भक्ति में है, इसलिए मैं भी यही प्रार्थना करूँगा कि बस मेरी वाणी गुरानो कथन है। आज मेरा बड़ा भाग्य है सब संतों के दर्शन, सब महात्माओं के विद्वानों के दर्शन, इतना कह करके और बस।
तत्व समन्वितम् भाषणम प्रस्तुतम श्रीमद् मुरारीलाल शास्त्रिण। अभी मुरारीलाल जी ने त्रणादव सुनिचेन के साथ सूक्ति की व्याख्या की। अब मैं आगे यहाँ के धुरंधर विद्वान रंग लक्ष्मी के प्राचार्य अनेक विषयों के आचार्य श्री मुरारीलाल जी शास्त्री से निवेदन करता हूँ, और विद्वानों को याद दिलाना चाहिए कभी कभी, यहाँ महाराज जी ने सर्व वेदांत सारम यद, सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मकत्व लक्षणम वस्तुतः द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम विषय ये रखा हुआ है। अच्छा हो जैसे शंकर वेदांत लोग केवल एक धाति अपनी मानकर और श्रीमद् भागवत को ये समझते हैं कि इसमें सिवाय ज्ञान के और कुछ भी नहीं है, वस्तु है, अद्वितीय है, तन्निष्ठ है, कैवल्य एक प्रयोजन है। संभवतः महाराज जी के मन में रहा है कि हम इसको किस प्रकार से भक्ति परक लामें, कैवल्य शब्द को हम कैसे लामें भक्ति में। अब आप आगे के विचार सुनिए।
मेघाच्छविं वेणुधरं प्रशांतं गोपांगना प्रांगण केलकीरं श्रीमद् यशोदाक्ष चकोरचंद्रं गोविंद देवं प्रणमामि नित्यं। प्रातस्मरणीय गुरुचरणाः एवं परम श्रद्धेयाः सर्वे विद्वांसः अत्र गताः सर्वे अतिथयः स्त्रयः बांधवाश्च, यद्यपि अभिरूपयुभूयिष्ठेयं परिषद् अस्यां परिषदि समुपस्थिता ये विद्वांसः समागताः ते सर्वे संस्कृतं वक्तुं पारयन्तीत्यहं मन्ये, तथापि अत्रोपस्थितानां जनानां स्वरूपं दर्शन हिन्दीभाषायामेव अवलम्ब्य सर्वे प्रोच्यते, अस्मात् हेतु अहमपि हिन्दीम् अनुसृत्य वच्मि। पुमान् भवाब्धिं न तरेस्स आत्मः, ऐसा कहा गया कि यदि मानव जीवन मिला और इसको भवसागर से पार न हुआ तो वो आत्मघाती है। ईश्वर तत्व पर और अपर रूप से द्विविध वर्णित है। वास्तविक में बात यह है कि व्यक्ति चाहे जो वर्णन करता रहे, लेकिन मुख्य उपदेश क्या दिया है कि सर्वोपनिषदाम सारम पे बोलना है। तो मेरा कहना ये है कि ये मानव देह अनेक योनियों में भ्रमण करके और अंतिम मिला है, ये ही विवेकशील है। इसने विचार किया कि भाई क्या कारण है मुझे शाश्वत आनंद नहीं मिलता। जब मैं बाल्यावस्था में था तो मुझे जननी से प्रेम था, जब मैं किशोर बना तो मुझे सखाओं से प्रीति हुई, और जब मैं युवा हुआ तो मुझे युवती ने अपने स्नेह पास में बांध लिया, और अनेक जन्म जन्मांतरों में भ्रमण करता हुआ मैं देव भी बना, मैं पशु भी बना, पक्षी भी बना। तब विचारशील व्यक्तियों ने विचार किया कि मूल कारण क्या है जिससे हमको शाश्वत आनंद नहीं मिलता। तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए ही श्री जीव गोस्वामी महाराज ने श्रीमद् भागवत के विषय संबंध अधिकारी और प्रयोजन जो अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं उन पर विचार किया, और उसमें तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, भगवत संदर्भ एवं श्री कृष्ण संदर्भ, इन चार संदर्भों के द्वारा उन्होंने केवल संबंध का वर्णन किया है। इस जीव का ब्रह्म से किस प्रकार संबंध बने, बस इनका इसका चार संदर्भों में वर्णन है, और पंचम संदर्भ है भक्ति संदर्भ। उस भक्ति संदर्भ में साधन का विवेचन, कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है, उस साधन पर विचार किया गया, एवं अंतिम संदर्भ है उनका प्रीत संदर्भ। उस प्रीति संदर्भ में ही इस पद्य पर गहन विचार है आपकी संप्रदाय के अनुसार। उस प्रीत संदर्भ में श्रीमद् भागवत क्या है और उसके प्रयोजन क्या हैं, इसके प्रतिपादन करने में जीव गोस्वामी महाराज ने इस पद्य को प्रमाणत्व उपन्यस्त किया है कि सर्वोपनिषदाम सारम ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। यहाँ कैवल्य शब्द यद्यपि मुक्ति ही कैवल्य निर्वाण श्रेयो निश्रेयशामृतम मोक्षोपवर्ग सत्यम सत्य ग्रहम व्याकरण उपमान कोशात्वाक्यात् व्यवहार तस्य के अनुसार कोश प्रमाण से कैवल्य शब्द का अर्थ मुक्ति ही है। ये आठ पर्यायवाची परस्पर में शब्द हैं, कैवल्य है, निर्वाण है, ये सब मोक्ष परक है। अब ये है कोश केवल वाच्यार्थ का निरूपण करता है, जो शास्त्रज्ञ हैं, साहित्यज्ञ हैं, काव्य वासना परपक्व बुद्धि जो सहृदय पुरुष हैं जीव गोस्वामी जैसे महाराज, जो जानते हैं कि अर्थ त्रिविध होता है वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य, उस वाच्यार्थ की कोई प्रधानता नहीं होती व्यंग्यार्थ के समक्ष। जिस समय व्यंग्यार्थ यदि चमत्काराधायक कोई प्रतीत हो रहा है तो वाच्यार्थ का वहाँ परित्याग होकर के वो ध्वन्यमान अर्थ कहलाता है। तो इसी कैवल्य का यद्यपि कोश से मोक्षार्थ है तथापि जीव गोस्वामी महाराज ने इसका भक्ति अर्थ किया। कहो किस प्रकार किया है, परमात्मा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, यद्यपि नैयायिक दृष्टि से ज्ञान क्षणत्व अवस्था ही है, नील पीतादिकों का ज्ञान क्षणिक है, लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान कैसे शाश्वत रहता है, इसमें क्या प्रमाण है कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म प्रमाण है, सत्य भूत है, अनंत है, कभी इसका विनाश नहीं होता, सदा सोमवेद मग्र आशीत इन श्रुतियों से जगत की एक कारणता भासती है, एको हम भविष्याम से उसकी संकल्प चेष्टा भासती है, ईश्वर जो संकल्प चाहे उस काम को कर सकता है। इससे सिद्ध होता है कि अद्वैय ज्ञान जो है वो अद्वैय ज्ञान रूप वो ही परमानंद संदोह है। परमानंद संदोह की प्राप्ति करना ही जीव का मुख्य लक्ष्य है, उसे परमानंद कैसे मिले बस वो ही ये चाहता है। तो ये अद्वैत ज्ञान जो है इसी को दो प्रकार से विभक्त किया, जैसे मुक्ति के पांच भेद होते हैं, मुक्ति पंचविध है, सालोक के सायुज्य सारूप्य सामीप्य साष्टी इत्यादि वेद से वो पांच प्रकार की है, लेकिन उसमें सायुज मुक्ति भक्तों की दृष्टि में अत्यंत निकृष्ट है। केवल सामीप्य भक्ति को उत्तम मानते भक्त जो है उनमें सामीप्य भक्ति जैसे उत्तम है, उसी प्रकार से परतत्व का जो साक्षात्कार है उसी का नाम मुक्ति है, उसी से भक्ति सिद्ध होगा। मुक्ति का लक्षण श्रीमद् भागवत जी में किया, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप व्यवस्थिति को बतलाया गया। अन्यथा रूपम हित्वा, अन्यथा रूपम किम देहाद्यंकृति, ये अनाद वासना से चला आ रहा जो जीव है इसमें वासना भरी हुई है कि मैं स्त्री था, मैं पुरुष था, मैं पशु था, मैं पक्षी था, वो सब जो वासना वासित जीव है उसको साक्षात्कार नहीं हो रहा ब्रह्म का, क्योंकि वो माया उसको ढके हुए है। और जब वो माया दूर हो जाएगी तो माया कब दूर होगी, जब भगवत प्राप्ति होगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया और मामे ये प्रपद्यन्ते माया वेताम तरंतते, वो ही पार होता है जी। इसलिए कैवल्य शब्द का मुझे भक्ति अर्थ करना है प्रीति, वो कैसे होगा कि शुद्ध केवल, केवल का अर्थ है शुद्ध, इसी से शुद्धाद्वैत है। वैष्णवों का मूल सिद्धांत है केवलों का अर्थ है शुद्धा, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य स्यै, पाणिनि का सूत्र है गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य स्यै केवलस्य भावः कैवल्यम, भाव अर्थ में गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य स्यै सूत्र से जब स्यै प्रत्यय किया जाता है तब कैवल्य शब्द की निष्पत्ति होती है। और यहाँ श्री जीव गोस्वामी महाराज ने लिखा यदि भाव में प्रत्यय हो गया तो काम बिगड़ जाएगा अपना, तो वो कहते हैं क्वचित तद्धितांत प्रत्यय नापि कैवल्य शब्द प्रयोग, तद्धितांत प्रत्यय स्वार्थ का स्वार्थ के तद्धितांत प्रत्यय, अत्र शय प्रत्यय स्वार्थ को गया, हाँ केवल एव कैवल्य, केवल शुद्धो हरि सैव कैवल्य तदेव एकम प्रयोजनम यस्य तत् एतत् पद्यम एतदपि स्मरणीयम विद्वद्भि एतत् तु विशेषणम अस्मिन् पद्ये विशेष्यवाचकम पदम नास्ति सर्वोपनिषदां सारम ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणं वस्तुद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैक प्रयोजनं सर्वाणि विशेषणानि, अत्र विशेष्यवाचकं पदमेव नास्ति। विशेष्यवाचकं पदं तु पूर्वस्मिन् पद्ये विद्यते श्रीभागवतं यत्र उक्तः एवं पुराण सन्दोहः चतुर्लक्षो उदारतः तत्र अष्टादश सहस्रं श्रीभागवतमिच्यते, तो श्री भागवतम इत्यनेन विशेषणानि अन्वयं प्राप्नुवन्ति। श्री हरिसेव्यः एतदेव अस्ति, अतः कैवल्य पदेन एकः हरि तदेव एकं मुख्यं प्रयोजनं यस्य भगवत प्राप्ति कथं भवेत् एतदेव मुख्यं प्रयोजन मनुष्यस्य।
रंग संस्था प्रधानेन रंग विद्यालय प्रधानेन संयंता रंग संस्था
राधा कृष्ण विराज रहे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके फिर तदनंतर अध्यक्ष महोदय, तदनंतर विद्वद्गण, वैष्णव समुदाय, माता और बहने, आज का दिन परम हर्ष परम उल्लास का है। क्यों? ये जो सभा प्रारंभ हो रही है ये कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को लक्ष्य लेकर के चल रही है, और कृष्ण जन्माष्टमी कहाँ होती है, कृष्ण को मानने वाले असंख्य जीव आज भी इस भारत में हैं और विदेश में भी होंगे, लेकिन वो श्री कृष्ण जो है, जिसको श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कृष्ण शब्देन परम वस्तु उच्यते तदेव कदाचित परम सौंदर्यम स्वगतम प्रकटी करिष्यामी साकारम प्रादुर्भूतं सत श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण ने इस मथुरा में जन्म लिया। वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा वो श्री कृष्ण ने अन्यत्र कहीं जन्म लेने की इच्छा नहीं की? क्या विशेषता थी जिस कारण से उस श्री कृष्ण जो परब्रह्म परमात्मा है उसने मथुरा में ही जन्म लिया? तो जहां श्रीमद् भागवत जी में दशम स्कंध में है इसका प्रकरण आया मथुरा का, वहां ऐसा लिखा राजधानी ततस्सा भूत सर्वयादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। वल्लभाचार्य जी महाराज ने जो टीका है उनकी सुबोधनी है उसका नाम, और उसमें बीच बीच में उनने कारिकाएं दिया है, श्लोक नहीं कहा उनको, उनको कारिका शब्द से कहा है। इस श्लोक के ऊपर आपने कारिकाएं दी हैं, उस कारिका में सबसे प्रथम कारिका जो यहां संबंध कर रही है वो कारिका आप वल्लभाचार्य जी महाराज आज्ञा करते हैं, सर्व तत्वेषु यो विष्टः सभूमावपि संगतः सनित्यं क्वचिदेवास्ति तस्थानम मथुरा स्मृता। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण तत्वों के अंदर विराजमान है, व्याख्याकारों ने भी उसी अभिप्राय को लिखाया अथेदम विचार्यते, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो तदेवानुप्राविशत, उस सृष्टि को प्रकट करके भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। और आगे जाकर के भागवत ने वर्णन किया त्रयोविंशति तत्वानां गणम युगपदाविशत। इस प्रकार से श्रुति और पुराणों के वाक्य के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि जो भगवान संपूर्ण तत्वों में विराज रहे हैं वही भगवान इस पृथ्वी में भी विराज रहे हैं। सब भूमा वसंगतः, वह भूमि जो पृथ्वी है उसमें भी विराज रहा है। तो जैसे वेदों ने वर्णन किया, वेद को ही श्रुति शब्द से कहते हैं, तो जैसे वेदों ने कहा कि गुहाम प्रविष्टौ, ये हृदय रूप जो गुफा है और उसमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही विराज रहे हैं, तो जैसे देह में प्रविष्ट वह परमात्मा और देह का एक देश जो ये अंतकरण इसको कहा जाता है, तो देहिक देश देह का जो एक देश अंतकरण है उस अंतकरण में वो अभिव्यक्त होता है प्रकट होता है। तो जिस प्रकार देह के एक देश अंतकरण में वो अभिव्यक्त प्रकट होता है उसी प्रकार से संपूर्ण भूमि में विराजता हुआ, संपूर्ण तत्वों में विराजता हुआ भी वो श्री कृष्ण भूमि का जो एक देश मथुरा है उस मथुरा में उसने प्राकट्य स्वीकार किया। ऐसा वर्णन करके फिर भगवान के जन्म का प्रकरण आया। भगवान ने जन्म लिया, तो जन्म लिया तो देवकी माता और वसुदेव जी दोनों ही दर्शन कर रहे थे, वही अधिकारी थे। तो दर्शन करने पर उनके लिए ये प्रारंभ हुआ भागवत, तमद्भुतम बालकमम उजेक्षणम। वो कमलदल लोचन भगवान श्री कृष्ण अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए। जब अद्भुत बालक के रूप में वो प्रकट हुए तो वहां भी वल्लभाचार्य जी ने एक कारिका लिखी बड़ी सुंदर, दासीनां सर्वरक्षार्थम निमित्ती कृत्यतादृशम प्रादुर्भूतो मम स्वामी नैश्चिंत्यं वाच पूर्ववत्। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ये जो है श्री कृष्ण जो प्रकट हुआ वो दासियों जो श्री गोपीजन हैं उनकी रक्षा करने के लिए अत सर्व गुणों पे तह से जो अलौकिक काल बतलाया उस काल को निमित्त बना करके और मेरा जो स्वामी है वो प्रकट हुआ। इस कार्य का से ये निश्चय होता है कि इस कार्य का से ये निश्चय होता है कि वल्लभाचार्य जी महाराज के जो इष्ट थे वो गोपीजन वल्लभ। तो मथुरा में जो श्री कृष्ण प्रकट हुआ है उसके लिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा मानते हैं कि ये मेरा सर्वस्व प्रभु जो श्री गोपीजन वल्लभ है वही इस रूप में प्रकट हुआ है। इस बात को मम स्वामी और दासी नाम इन दोनों शब्दों के द्वारा उसकी तरफ उस अर्थ की तरफ उसका आकृष्ट होता है, खिंचाव होता है। इससे निश्चय होता है कि जो गोपीजन वल्लभ है वो श्री कृष्ण वो मथुरा में प्रकट हुआ है, मथुरा में वो श्री कृष्ण वो विशेष तत्री आयास्य एवं संक्षेप। तो वहां श्री कृष्ण जो मथुरा में प्रकट हुए वो मथुरा में प्रकट हुए श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार से खेल करते हैं। वहां चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं वो उनके संप्रदाय जो मातृ संप्रदाय है ये इस मातृ संप्रदाय का प्रधान विषय क्या है, संकीर्तन। संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। उस संकीर्तन को कैसे किया जाए, ऐसे नहीं मन कहीं है, ध्यान कहीं है, इंद्रियां कहीं जा रही हैं और श्री कृष्ण हरे राम, ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बताया कि अगर तुम ऐसे सामान्य रीत से कीर्तन करोगे तो उसका सामान्य फल तुमको मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति जो उसका मुख्य फल है वो नहीं मिलेगा। वो जब मिलेगा जब उसके लिए तीन प्रकार बताई, वो तीन प्रकार से तुम जाओगे तब वो संकीर्तन तुम्हारा सफल बनेगा। तो क्या क्या किया आपने, त्रणाम दप सुनी चेनाम तरो रिवु सहिष्णुनाम अमानिनाम मान देना कीर्तनीय सदां हरि। हरि का सदा कीर्तन करो लेकिन इस प्रकार से करो तब वो सफलता लाएगा। पहले त्रणादब सुनी चेन, त्रणाम तिनका, तिनका कितना नीचा होता है, उस पर पैर भी रखता है चाहे दसरे से उसको मसल देता है, आए उससे भी मैं नीचा हूं ऐसी भावना करूं। वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा भाव जो पदार्थ है आए, उस पर अगर पहुंचना है तो पहले भावना करनी पड़ेगी। भावो भावनया सिद्धा साधनम नान्य दिश्यति। भाव पदार्थ पे पूछने के लिए भावना करूं, भावना का प्रकार भी भागवत में बताया, सुस्मितम भावयेन मुखम। एकांत में बैठो, पवित्र आसन पर ऐसा ध्यान धरो, भगवान श्री कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कान करते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसी भावना करोगे तब जाकर के वो भगवान की भाव प्राप्त होगा। इसलिए आपने आज्ञा की त्रणादब सुनी चेन, तिनका से भी नीचे बन जाओ। ये भाव कब आ सकता है, जब अभिमान का निराश हो। जीव में महाराज अभिमान इतना कूट कूट के भरा हुआ है वो महाराज त्रणादब सुनीच को स्वीकार ही नहीं करता। और तरो रिव सहिष्णुना, वृक्ष जैसे सहन करता है ऐसा सहन करो और अपने हृदय में ऐसा भाव रखो कि मुझे मान की आवश्यकता नहीं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मान को दो दूसरों को। इस प्रकार से अगर संकीर्तन किया तो वो सफलता को निश्चित प्राप्त कराएगा, भगवत प्राप्ति निश्चित करेगा। अस्तु, बार बार हमारे संचालक महोदय कह रहे हैं तो मैं भी विश्राम दिए देता हूँ। समय को देखते हुए
वक्ता को रोकना या हाथी को रोकना जैसा होता है, कष्ट बड़ा होता है किसी के व्याख्यान में किसी को रोकना, पर ये पाप करना पड़ता है संयोजन के नाते।
हाँ, तो इसलिए सिद्धांत ऐसा है तो वो जो है तो
अब कोई बात नहीं है, आपने अभी धीरेलाल जी से सुना और
तो इसलिए वहाँ कैवल्य का अर्थ जहाँ भी जाएंगे भागवत समस्त में मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति यही अर्थ आएगा। लेकिन यहां कैवल्य के प्रयोजन में जो कैवल्य है उसका अर्थ है प्रेम।
वाह बहुत सुंदर।
और प्रेम का जो है वो सबसे बड़ा आदर्श है गोपी प्रेम की ध्वजा है। इस प्रकार से समय के अभाव से मैं सारे शब्दों में जो है वो बस
वाह वाह शुद्धाद्वैत मतार्किण ये शुद्धाद्वैत मत के सूर्य शुद्धाद्वैत मत अर्किण माने सूर्य शुद्धाद्वैत मतार्किण हीरल श्री जी
सूक्ष्म रूप में ही कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि संसार में जीवात्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भवसागर को पार करना। वो भवसागर किस प्रकार से पार किया जाए इसके विषय में विद्वानों के आचार्यों के मनुष्यों के मतभेद हमेशा से रहे हैं और रहते चलेंगे। इस भवसागर को पार करने के लिए शास्त्रों में ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग तीन मार्गों का निर्देशन किया गया है। तीनों ही मार्ग भगवत प्राप्ति के साधन हैं। इन तीनों ही मार्गों से जो भी जीव श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके ईश्वर के ऊपर विश्वास होकर के और चलता है उसे प्रभु के पादों की प्राप्ति होती है। भागवत शास्त्र में भी अनेकों प्रकार से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया गया है। एक जगह कहते हैं कि संसार सिंधु मत दुस्तर मुत्ति तीर्षो नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषे वणमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवातुरस्य। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने से ही मनुष्य संसार सागर को पार कर सकता है। यहाँ पर एव कार दिया गया है, संस्कृत भाषा के जानने वाले लोग समझेंगे। एव कार अन्य की व्यावृत्ति में बतलाया जाता है कि केवल कथा सुनने से ही भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करने से ही भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक है। प्रायों करके अपने धार्मिक ग्रंथों की ये रीति है कि शुरू में और अंत में उस शास्त्र का निचोड़ बतलाया जाता है। उसी को बतलाते हुए व्यास जी महाराज आज्ञा करते हैं कि सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुद्वितीयम् तन्निष्ठम् कैवल्यैक प्रयोजनम्। ये भागवत शास्त्र क्या है कि सभी वेदांतों का सार है। अद्वितीय वस्तु जो श्री हरि है श्री कृष्ण है उनको बतलाने का साधन है और इसका एकमात्र प्रयोजन है कैवल्य। अब कैवल्य शब्द के अर्थ में अनेकों विद्वानों के अनेकों प्रकार के तात्पर्य हैं। पूर्व में रंगलक्ष्मी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी कह ही चुके हैं कि केवल शब्द से स्वयं प्रत्यय करके इसको सिद्ध किया जाता है। उसका तात्पर्य है कि इस शास्त्र का प्रयोजन केवल कैवल्य है और उस कैवल्य को शाब्दिक दृष्टि से मुक्ति अर्थ किया जाता है, किंतु भक्त लोग मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। दीमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः। मुक्ति कोई साधारण तुच्छ वस्तु नहीं है। भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति मुक्तये। हजारों मनुष्यों में कोई पुरुष ऐसा होता है जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और भक्त लोग उस मुक्ति के लिए तुच्छ मान के भगवत सेवा को मानते हैं प्रधान रूप से। तो यहाँ पर भक्त लोगों के मत से कैवल्य शब्द का अर्थ प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति ही एकमात्र भागवत शास्त्र का प्रयोजन है। इतना ही कहके मैं अपनी वाणी को पवित्र
गोवर्धनस्थ विज्ञेन। गोवर्धनस्थ है तो मथुरा जी गोवर्धनस्थ विज्ञेन श्री जगदीश शास्त्रिण, गोवर्धन के विद्यालय के आप प्राचार्य, गोवर्धनस्थ विज्ञेन श्री जगदीश शास्त्रिण।
योग जो बहुत प्रसिद्ध वस्तु है, जैसे आरंभ में सुखदेव जी हयात ने द्वितीय स्कंध में वर्णन किया है सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति, सद्यो मुक्ति में बताया हुआ है, उन्हें योग बताया हुआ है, वो भगवान वो जीवात्मा कहाँ रहे और वो कहाँ स्वरूप है और जन्म के कैसे मिले, तो मैंने वो दुनिया सभी को उदाहरण दिया है कि मूलाधार के बीच में कृपा के रहकर निवास करे है और अब आयु प्रभाव को बड़ा स्वरूप प्रतिचन्न स्वरूप है, भगवत में जान लो है जीवायाम सिख चुके भगवान जीव में सूक्ष्म जीव है, भगवान जैसे इतिहास में कहो यार, तो सूक्ष्म वस्तु परम तत्व वो जीवात्माएं केवल तो केवल को प्राप्ति के लिए वो जीवात्मा चर्चा है, तो चर्चा है वो प्रकार जाता है जो भी इसको जानते हैं वो सत्य को विभिन्न करके ब्रह्म में लीन होता है। सुजाला रानी मानसरोवर चलते मानसरोवर से चलते चलते वृंदावन पहुंच जाती है और वृंदावन में राजक्रीड़ा का जो आनंद है वो भक्तों को देती हैं, वही कैवल्य कैवल्य प्रयोजनम वही कैवल्य है जिसमें भक्तों को परम आनंद की प्राप्ति हो। मरने के बाद मोक्ष होती है इसको तो जानने वाले जानते हैं, लेकिन जीवन में जीवन मुक्ति इसी का नाम है, जो तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का जो सुंदर आनंद है वो सर्वानंद है उसको प्राप्त हो, जो सर्व सबका जीवन का यही है, जो गोपी गोपियों का क्या क्या देखती है, ब्रह्म क्या क्या रूप देखती है, बिगाल क्या क्या रूप देखती है, वेदांत को सिद्धांत कहा है और परब्रह्म जो है वेदांत को सिद्धांत साकार रूप में है करके बालक रूप में और पृथ्वी धूल में गो धूलो निश्चित वेदांत सिद्धांत हो, ऐसे वेदांत को जो सिद्धांत है वो निश्चित का नाचर है और पृथ्वी बीच में यही वेदांत को सिद्धांत है। सिद्धांत है कई वजह प्रयोजन मोक्ष एक मोक्ष भक्ति ही सबके ज्यादा ऊंची है, मोक्ष को नहीं माने भक्त लोग मोक्ष को नहीं माने, मोक्ष की कामना नहीं करें, भक्तन को तो भगवत या भगवत को प्रेम की आवश्यकता है, या जो प्रेमा भक्ति के द्वारा दूसरी गोपी का है सिद्धांत ऐसा बातें कहे बिना कि ना मक्खन खड़ा है तो भगवान नित्यत वेदांत सिद्धांत हो, वेदन को जो सिद्धांत है वो बात आगे ऐसे वो परब्रह्म परमात्मा जो है हमारे गोपी ने परिवासी ने वह रस के आनंद रूप में प्रेम के रूप में देखा है वो प्रेम स्वरूप ही है, या प्रकार भगवान की आज्ञाएं हमारी सभा की थी अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ।
कैवल्य प्राप्त ये चोक्तम, कैवल्य प्राप्त ये चोक्तम राधानंद करम पुनः श्री हरिहर विज्ञेन कथितम चात्र संसदि श्री बलदेव जी आचार्य गोकुलस्था।
जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽथो, जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप, जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारहारुमुकुंदः, सकलश्रुतीनां ऋग्यौ किमपि फलौ देवकी फलति तत्पालयति यशोदा प्रकामम्। भुञ्जते गोप्यः।
परमादरणीया पूज्यपाद स्वामी महाभागा अनल्पादरणीया विद्वांसः समुपस्थिता भक्तगणा मातृशक्तय, ये कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है। मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया, कृष्ण परमात्मा है, उसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। मत्स्येति जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सार भूतम यत् सर्वम मथुरा सा निगद्यते। ब्रह्म सब जितने भी ब्रह्म वेदांत हैं, उपनिषद हैं, सबका सार मथन करने पर जो माखन निकला तत्व मथुरा है, भगवत स्वरूप है। अर्थात यही ज्ञान है, जब ज्ञान रूप तत्व है, इसी में भगवान परम ज्ञान सत्य अनंत ज्ञान की उत्पत्ति हुई। लेकिन ज्ञान स्वयं क्षण द्वय अवस्थाई होने के कारण उस अनंत पूर्ण ज्ञान को संचित करने में असमर्थ है, इसलिए इस गोकुल में यशोदा के यहाँ उस ज्ञान को पहुंचा देते हैं वसुदेव। वसुदेव मथुरा में ज्ञान क्या जो स्वरूप परमात्मा उत्पन्न हो रहा है उसको गोकुल पहुंचा देते। गोकुल क्या है? ये मानव शरीर ही हमारा आपका गोकुल है। गवाम इंद्रियाणाम कुलम निवसंत यत्र तत् गोकुलम, ये इंद्रियों का समूह इसमें विराजमान है, इसलिए ये शरीर ही गोकुल है। इसमें जो बुद्धि है वो यशोदा है, उसी के द्वारा प्राणी को यश प्राप्त होता है। यशोदाती यशोदा बुद्धि से ही यश प्राप्ति होती है, बुद्धि बिना प्राणी जो है यश अर्जित नहीं कर सकता। और मन जो है वही नंद है, आनंद की अनुभूति मन के द्वारा होती है। यदि मन किसी कार्य में नहीं है तो जरा भी आनंदानुभूति प्राणी को नहीं हो सकती। इसलिए जब वसुदेव रूपी मथुरा का ज्ञान जो है उस परम ज्ञान परमानंद स्वरूप भगवान के लिए यशोदा रूपी बुद्धि